मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 3 अप्रैल 2019 है और आज के इस afis.com ऑडियो लेक्चर को में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं आलोक यादव, आपका गांव है चंद्रपुर खास, जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं, और रवि भूषण, आपका गांव है मुकामा, जिला पटना बिहार से हैं। तो आलोक और रवि, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, चलिए आज भी आप सबको याद दिला दे रहा हूं कि चूंकि अब चुनाव का माहौल है जो बहुत लंबे समय तक रहना है, इसीलिए हमें आकाशवाणी और दूरदर्शन न्यूज में ऐसी कुछ खास बातें मिलेंगी नहीं जिनको लेकर के हम इस डेली ऑडियो लेक्चर में विस्तार से चर्चा कर सकें, और जब भी थोड़ी बहुत कुछ बातें मिलेंगी तो डेफिनेटली वो मैं आप लोगों के ध्यान में लाऊंगा ही। आज भी लगभग ऐसा ही दिन है कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको लेकर के बात की जा सके, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस अवसर का फायदा उठाया जाए और आज मैं आपसे इस इश्यू पर बात करूं कि आप सबको प्री की तैयारी कैसे करनी चाहिए, प्री की तैयारी आप कैसे करेंगे। मैं इस विषय पर आज आपसे बात करने जा रहा हूं। हां, एक बात मैं पहले आपके ध्यान में ला दूं कि आज एक करेंट कंटेंट में आर्टिकल डाला गया है, डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके मेंस की दृष्टि से है, हेमा रामकृष्णन का लिखा हुआ है, इकोनॉमिक टाइम्स में ये आर्टिकल छपा था और मैं चाहूंगा कि आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें और संभव हो तो नोट्स बना लें या इसका प्रिंट अपने पास रख लें। ये आर्टिकल आपके बहुत काम आएगा क्योंकि अब जो पूरी की पूरी जो प्रणाली है, चाहे वो प्रशासन की हो या अर्थव्यवस्था की हो, आप देख रहे हैं कि डिजिटलीकरण की ओर जा रहा है और सरकार का भी इस पर बहुत अधिक जोर है। तो इसमें आपको कुछ अच्छे फैक्ट्स मिलेंगे, कुछ साइंटिफिक अप्रोच आपकी इसके जरिए बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। फ्रेंड्स, आइए अब प्री की तैयारी के बारे में हम लोग बात करते हैं। आज 3 अप्रैल है, 2 महीने में भी अब 1 दिन कम रह गया है। 2 तारीख को यानी कि 2 जून को आप एग्जाम दे रहे होंगे, इस वक्त तो शायद आप एग्जाम देने में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, डेफिनेटली जैसे जैसे एग्जाम के दिन नजदीक आते चले जाते हैं, हमारी तैयारी करने का जो स्ट्रक्चर है वो सकरा होता चला जाता है। सकरा होता चला जाता है कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई चीज है जिसका बेस बहुत चौड़ा है, लेकिन जब ऊपर की ओर उठता है तो धीरे धीरे सकरा होता चला जाता है। यानी कि कुछ समय पहले तक या अभी तक आप कह लीजिए कि आप जो प्री की तैयारी कर रहे थे वो बहुत सारी दूसरी चीजों के साथ मिलकर के कर रहे थे, दूसरी भी चीजें कर रहे थे, दूसरी चीजों की भी तैयारी हो रही थी और साथ ही साथ प्री की भी तैयारी हो रही थी। लेकिन मैं चाहूंगा कि अब आपको उसे सकरा धीरे धीरे करते चला जाना चाहिए और जब 1 महीने बच जाए तब तो उसे आपको बिल्कुल ही फोकस्ड कर देना चाहिए एकमात्र प्री की तैयारी के लिए। तब जाकर के सही मायने में आप उसके साथ न्याय करेंगे। आप थोड़ा सा इसके चैलेंज को समझने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, इसके चैलेंज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको मेंस की तरफ ले जाना चाहूंगा। आप मेंस के रिजल्ट उठा करके देखिए, फाइनल रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं जो सिलेक्शन हो जाते हैं। मोटे तौर पर मैंने देखा है कई साल से लगातार, और ये बहुत पिछले कई सालों से भी होता आ रहा है, और वो ये कि अगर 1000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, टोटल की मैं बात बता रहा हूं, 1000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन 1000 स्टूडेंट्स, देखिए जो टोटल जो दायरा होता है मार्क्स का 2025 नंबर टोटल, और 2025 नंबर में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, ताज्जुब होगा कि सेम मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या होती है 4, यानी कि एक जैसे मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट 4 होते हैं, जबकि मार्क्स का फैलाव है 2025, यानी कि काफी मार्जिन है, लेकिन सेम मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट होते हैं। ये उनका जमावड़ा होता है, ये कंपटीशन का स्वरूप है जिसे आप नेक टू नेक फाइट कहते हैं। अब इसको आप अगर प्री में अप्लाई करके देखेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। घूम इसलिए जाएगा, 2 चीजें हैं। नंबर 1 कि पहला तो जो मार्क्स का फैलाव हो वो केवल 200 है, आपकी जो आपका जो सिलेक्शन होना है वो जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर के आधार पर ही होना, सेकेंड तो क्वालिफाइंग है आप जानते हैं, तो 200 नंबर ही है, 200 मार्क्स। और जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं उनकी संख्या लगभग लगभग 10 to 12,000। अभी जो 10 to 12,000 स्टूडेंट हैं 200 नंबर में ही लड़ रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सेम मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी ज्यादा होगी, सेम मार्क्स, और उसमें पॉइंट पॉइंट के आधार पर नंबर अलग मिलेंगे आपको। देखिए मेंस में तो यह है कि कंप्लीट मार्क्स होते हैं कि किसी किसी को 815 मिले, किसी को 814 मिले, किसी को 813 मिले, क्योंकि वहां वैल्यूएशन इस तरीके का होता है, लेकिन यहां तो पॉइंट के आधार पर होता है। पता लगा कि आपका स्कोर है 53.7367, कुछ भी इस तरह के पॉइंट्स में मार्क्स हो सकते हैं, तो यहां जो संभावना है समान मार्क्स की वो पॉइंट्स में भी है। इसका मतलब हुआ कि एक प्रश्न का सही और गलत होना आपको सफल और असफल बना सकता है। इस सेंसिटिविटी को आप समझिए, जब आप इस संवेदना को समझेंगे तभी मुझे लगता है कि इसकी तैयारी की गंभीरता को समझते हुए आप अपने आप को उसके अनुरूप ढाल सकेंगे। अदरवाइज तो आपको लगेगा कि ठीक है यार, सामान्य सी परीक्षा है, क्या है उसमें निशान लगाना है, दो चार गलत भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे तो 55% के आसपास स्कोर लाना है, 45% तो छोड़ने की गुंजाइश है। ठीक है, 45% छोड़ने की गुंजाइश है, और अगर आप 55% स्कोर ले आते हैं तो मैं समझता हूं कि मानकर चलना चाहिए कि सिलेक्शन की संभावना काफी कुछ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 55% स्कोर करना उतना आसान है? बिल्कुल नहीं है, वह उतना ही कठिन है जितना कि आप दूसरे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में स्टेट सिविल सर्विस वगैरह में चले जाइए कि शायद 90% स्कोर करना मुश्किल हो, लगभग लगभग उतना ही मुश्किल यहां भी है। तो सरल तो आप बिल्कुल मानिएगा ही मत, लेकिन कठिन भी इतना मत मान लीजिएगा कि मेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों अब ये जो 2 महीने का समय बचा हुआ है इसमें इसके लिए मैं कुछ आपको पॉइंट्स देना चाहूंगा, अगर आपको ये उपयोगी लगते हैं या आपके लायक ये हैं तो आप एक प्रकार से इन्हें अपने अनुकूल मान सकते हैं, और वो इस तरीके से फ्रेंड्स कि पहली बात कि जब आप अपना पूरा सिलेबस देखते हैं तो पाते हैं कि 4 मुख्य विषय पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 मुख्य विषय, राइट? और वो 4 मुख्य विषय क्या हैं, इसके बारे में हम लोग इससे पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, जिसमें ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस को सबसे पहला स्थान होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये तीनों कभी कभी ऊपर नीचे होते चले जाते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि पॉलिटिकल साइंस टॉप पर होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट पर आपकी मूलभूत यानी कि जो बेसिक तैयारी अच्छे से हो जानी चाहिए। जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनके आधार पर मैं 3 बातें कहना चाहूंगा, खासकर इन 4 विषयों के बारे में। पहली बात तो यह है कि इन 4 विषयों के जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपको वो सारे टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए, इसमें छोड़ने की संभावना नहीं रखनी चाहिए कि ठीक है मैं इसको छोड़ देता हूं, उसी पूरी उसकी स्टडी पूरी होनी चाहिए। पूरी स्टडी होने के साथ ही साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद भी रहने चाहिए। देखिए नो डाउट कि मैं शुरू से ही किसी भी सब्जेक्ट को समझने पर जोर देता रहता हूं, जोर अभी भी जोर दूंगा, समझने पर जोर दूंगा, नो डाउट, लेकिन प्री में कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे होते हैं जो आपके स्मरण शक्ति पर आधारित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री को ले लीजिए आप, अब हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट पर कोई किसी घटना के बारे में पूछा जा रहा है तो उसमें स्वाभाविक है कि आपको वो चीज याद होनी चाहिए। ज्योग्राफी में भी लगभग लगभग यही स्थिति होती है कि कुछ चीजें बिल्कुल ऐसी पूछ ली जाती हैं जो आप केवल अपनी याददाश्त के आधार पर ही सही उत्तर देकर आ सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हुआ आपको फैक्ट्स भी याद रखने हैं, और इसका जो 3rd पॉइंट है वो समझने की बात है कि आपको केवल विषय को पढ़ना ही नहीं है, केवल फैक्ट्स को याद ही नहीं रखना है, बल्कि उन विषय के जो टॉपिक्स हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझना भी है, इंटरलिंक्ड करके समझना है, इंटरलिंक करके समझने का मतलब है कि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से, दूसरे टॉपिक को चौथे टॉपिक से देखिए, अगर ऐसी संभावना है तो उन्हें इंटरलिंक्ड करके समझिए। और दूसरा है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, यदि आप पढ़ सकते हैं तो। हालांकि जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वो मेंस में जितनी आपकी मदद करती है, प्री में उतनी ज्यादा मदद नहीं करती, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो नो डाउट इसका फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। यह चार इंपॉर्टेंट बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में, जिन्हें मैं पिलर्स कहता हूं। दोस्तों, इसके बाद जो सेकेंड जो लेवल है वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का काफी बड़ा रोल आपके प्री एग्जामिनेशन में होता है। देखिए, करंट अफेयर्स की तैयारी का तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप शुरू से न्यूज़पेपर्स के माध्यम से उन्हें पढ़ते आ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट घटनाएं आपको लग रही हैं उन्हें आप नोट करते चले जा रहे हैं, और इस तरह से आपके पास एक अच्छा खासा समृद्ध खजाना हो गया है, और अब आप उन्हें दोहराते रहें, करंट अफेयर्स की तैयारी हो गई। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे थे तब क्या करेंगे? तो देखिए, अब केवल यही उपाय बचता है कि बहुत सी मैगजीन्स ऐसी इस समय निकलती हैं जो साल भर की घटनाओं का संग्रह आपको देती हैं, कुछ ऐसे नोट्स भी मिल जाते हैं। तो अब तो आपके पास फ्रेंड्स वही आधार रह गया है, लेकिन उसके साथ जो एक बहुत बड़ी समस्या आप फेस करेंगे वो है कि इनमें से कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सारी चीजों को अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उसमें सफलता मिल पाएगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अनसॉल्व पेपर के माध्यम से उसमें से जो इंपॉर्टेंट घटनाएं आपको लग रही हों उन्हें आप अंडरलाइन कर दें, निशान लगा दें, और उन्हें बार बार आप रिपीट करें। मित्रों, जो थर्ड पॉइंट है इसका और जो लास्ट पॉइंट पे, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब मैं इस रूप में नहीं ले रहा हूं कि आपको उससे कुछ फैक्ट्स पता लग जाएंगे। प्रैक्टिस का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस के साथ आपके दिमाग का रिदम बैठ जाए, लय बैठ जाए। तो जब आप उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपके दिमाग को उन्हें समझने की आदत पड़ जाएगी, तो वो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी काफी मदद कर सकेंगे। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मित्रों, ये है प्रैक्टिस की बात, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक बात के लिए आपको और अलर्ट करना चाहूंगा, वो ये कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि चूंकि अब आपको दो महीने तक सिर्फ प्री की तैयारी करनी है तो आप न्यूज सुनना बंद कर दें, न्यूज पेपर्स पढ़ना बंद कर दें। नॉट एट ऑल, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसके साथ अपना संबंध जारी रखिएगा, और केवल इसलिए नहीं कि मेन्स में ये काम आएगा, बल्कि आप महसूस करेंगे कि ये प्री में भी काम आएंगे, क्योंकि घटनाएं आपको मालूम है कि घट के खत्म नहीं हो जाती हैं। पीछे से बहुत सी घटनाएं हैं वो चलती चली आ रही होती हैं, और अभी की जो घटनाएं हैं वो आगे चलती चली जाएंगी। तो दोनों दृष्टियों से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्री में भी मदद करेगी और मेंस में भी आपको इससे काफी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ी सी आपको प्री की तैयारी के बारे में कुछ बातें बताने की कोशिश की है। देखिए, इसमें से जो भी बातें आपको सूट करती हों आप उन्हें अपने व्यवहार में ला सकते हैं। मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स फ्रेंड्स मैं आप को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं संगीत, एक है दिव्य प्रकाश सिसोदिया नरावली उत्तर प्रदेश से, नेक्स्ट है मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, प्रीति वासनिक भिलाई छत्तीसगढ़ से, अभिनव कौशिक सबैला बिहार से, संजय कुमार सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, और कृष्णानंद पटेल गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।